ठोक रही है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? कुछ समय पूर्व आपने जो स्वामी जी की चौपाई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप में वर्ण के सहज स्वरूप का संक्षेप में निरूपण किया था, कृपया कुछ और प्रकाश डालें। और दूसरा प्रश्न है, अचार से क्या तात्पर्य है? जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ती है। तो जीव शब्द का प्रयोग मानव सेवा संघ की पद्धति में हम लोग नहीं करते हैं। उसके स्वरूप के संबंध में बहुत तरह से बातें हैं और जो इस तरह से ज्ञान की पुस्तकों में खूब लिखी हुई है। मानव सेवा संघ की पद्धति में मैं के स्वरूप का वर्णन होता है। तो मैं का स्वरूप क्या है, इस संबंध में प्रातःकाल बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई थी। मैं में संसार का आकर्षण भी है, मैं में सत्य की खोज भी है और उसी में परम प्रेम की प्यास भी है। तो जो सत्य के संबंध में जिज्ञासा रखता हो, जो अनंत परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा रखता हो और साथ ही संसार के सुखों की ओर भी आकर्षित रहता हो, उसका नाम है मैं। तो ये मैं का स्वरूप है। अब फिर साधना के फल से क्या होता है? तो साधना के फल से एक विशेष बात यह होती है कि भूल से उत्पन्न हुआ संसार के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण का नाश हो जाता है। तो संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है तो सत्य की जिज्ञासा पूरी हो जाती है, तो प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान और प्रेम हमारा निज स्वरूप है। ज्ञान से अभिन्न होकर, प्रेम से अभिन्न होकर सीमित अहम भाव का लोप होता है। तो सीमित अहम भाव से मिटने के बाद हमारी स्वस्वरूप से अभिन्नता हो जाती है। ये तो है साधना का फल। और गोस्वामी जी के वचनों को जो कभी मैंने दोहराया तो उसमें यह उद्देश्य था बताने का कि जब ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होकर, प्रेम स्वरूप से अभिन्न होकर सीमित अहम भाव का लोप हो जाता है, जब मैं हूँ ऐसा जो अपना एक भास हो रहा है, तो जब तक यह भास बना रहता है कि मैं हूँ, तब तक दिखाई देता है कि ये जगत है, तब तक खोज रहती है कि सत्य क्या है। तो संसार की आसक्ति के त्याग के बाद जब अहम शुद्ध होता है, आसक्ति से उपजने वाले विचारों का नाश हो जाता है, तो उस शुद्ध अहम में यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपनी सीमा को तोड़कर अहम भाव का नाश करके ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप से अभिन्न हो जाए। तो जब ज्ञान स्वरूप सत्य से, जब प्रेम स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता हो जाती है, तब वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहाँ क्या होता है तो वो तो अनुभव की बात है, वर्णन करने की चर्चा केवल इतनी सी है कि संसार की आसक्ति मिटी नहीं कि दृश्य जगत लुप्त हो जाता है। ये मैं हूँ और ये संसार है, ये द्वैत का भास खत्म हो जाता है। तो जो जो ज्ञान पंथ के साधक होते हैं वो ज्ञान स्वरूप मैं ही हूँ ऐसा करके मान लेते हैं। तो जो सत्य है, जो नित्य तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परम तत्व है, वह मुझ में ही है, मैं ही हूँ ऐसा करके वे लोग मान लेते हैं। और जो ईश्वर विश्वासी हैं वे अपने सहज स्वरूप को प्रेम के धातु में परिवर्तित हुआ पा करके प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाते हैं। तो चाहे ज्ञान स्वरूप होकर सत्य से अभिन्न हो जाओ, चाहे प्रेम स्वरूप होकर सत्य से अभिन्न हो जाओ, अहम की सीमा खत्म हो जाती है। ये होता है स्वरूप। अचार से क्या तात्पर्य है? अचार का अर्थ है कुछ नहीं चाहना, तो हम लोग क्या चाहते हैं? तो संसार से कुछ चाहते हैं तो उसका नाम चाह होता है। जैसे आराम से रहने की जगह चाहिए, ठीक समय पर भोजन चाहिए, प्रेम पूर्वक गपशप करने के लिए मित्र मंडली चाहिए, उनको आदर सम्मान देने के लिए समाज चाहिए, ये सब मनुष्य की भूख है। स्थूल शरीर को खुराक चाहिए, अन्न जल इत्यादि चाहिए। सूक्ष्म शरीर को मान बड़ाई प्रशंसा चाहिए, चिंतन चाहिए, संगति चाहिए, कंपनी चाहिए, मित्रता इत्यादि। और इन शरीरों में फंसे हुए को सुख सुविधा सम्मान सब चाहिए। तो इन तीनों का संबंध, सुख का, सम्मान का, सुविधा का, इन तीनों का संबंध संसार से है। तो संसार से कुछ चाहिए तो वो चाह कहलाता है। और संसार से अपने को कुछ कुछ मिला हुआ है तो संसार ने जो दिया है उसका उपयोग करो तो साधन कहलाता है। तो प्राप्त सुख सुविधा सम्मान की परिस्थिति का सदुपयोग करो तो वो साधन कहलाता है, और अप्राप्त की चिंता में लगे रहो तो वो चाल कहलाती है। प्रश्नकर्ता भाई सुन रहे हैं? प्रश्नकर्ता कौन है? तो ये चाल हो गई। अब कहा जा रहा है कि अचाह हो जाओ, अर्थात अप्राप्त का चिंतन छोड़ दो। अप्राप्त का जितना जितना खाने पीने को शरीर की सेवा के लिए उपलब्ध है उसमें से उचित मात्रा में शरीर की सेवा की दृष्टि से शरीर को अर्पण कर दो तो इसमें कोई भूल नहीं है। लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भीतर से रह रह के बात उठती है कि क्या बताएं, ऐसा भोजन मिलता तो ठीक था, ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ये कहलाता है अप्राप्त का चिंतन। तो जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग साधन है, और जो प्राप्त नहीं है उसके बारे में सोचते रहना, उसकी आवश्यकता अनुभव करना, ये क्या है? तो चाह को छोड़ देना है। तो भाई हमारे कह रहे हैं कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो देखिए कि अप्राप्त के चिंतन से न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं, कर्तव्य पालन से शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में रहो, निकटवर्ती जन समुदाय के काम आने को सोचो तो शरीर की न्यूनतम आवश्यकताएं विधान के अनुसार स्वतः ही पूरी होंगी। और काम आने की बात न सोचो तो मस्तिष्क में से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता मिटेगी नहीं। और सच्ची बात ये है कि जो अचाह हो गए तो अचाह पुरुषों की न्यूनतम आवश्यकताएं शरीर की, अपनी तो क्या करेगा कोई, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का इंतजाम प्रकृति की ओर से होता है, विधान की ओर से होता है, समाज की ओर से होता है। अचाह पुरुषों को सोचना नहीं पड़ता है कि अब संध्या समय मुझे भूख लगेगी तो क्या होगा। जो अचाह होते हैं वे शरीर की जो बहुत ही आवश्यक बातें हैं उनकी पूर्ति की भी वे परवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उसमें भी अपने अविनाशी जीवन की साधना में बाधा मालूम होती है, इसलिए वे परवाह नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि भाई अगर इस शरीर को रखना प्रकृति को मंजूर होगा तो उसको भोजन आएगा ही समय पर, और आएगा तो हम अर्पण कर देंगे। अगर इस शरीर को रखना समाज के लिए उपयोगी होगा तो समाज खुद ही इसकी फिक्र करेगा। परिवार के लिए अगर ये शरीर आवश्यक है तो परिवार के लोग खुद ही चिंता करेंगे। तो करेंगे खिला देंगे तो खा लिया जाएगा, ला करके दे देंगे तो शरीर को अर्पण कर दिया जाएगा, और नहीं तो अपने को कोई जरूरत नहीं है। इतना सार रखे आरंभ में रखना पड़ेगा। और पीछे तो मैंने देखा है, कई संतों के बारे में देखा है, सुना है कि वे चाहते कुछ नहीं है, यहाँ तक कि शरीर को भूख के समय भोजन देना चाहिए इसके बारे में भी वो सोचना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो अपने जीवन का लक्ष्य है, अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने का जो लक्ष्य है, उसमें बाधा पड़ेगी तो वे परवाह ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। और सचमुच ऐसे जो अचार पुरुष होते हैं, उनकी चाह, उनके शरीर की जरूरतों की पूर्ति प्रकृति स्वयं करती है, परमात्मा स्वयं करते हैं, ऐसा मैंने संतों भक्तों के जीवन में सुना है, पढ़ा है। तो महाराज जी के लिए तो मालूम ही है ऐसा होता ही था। सुमित प्रकाश सिंह जी दिल्ली के रहने वाले सज्जन हैं, स्वामी जी महाराज के साथ हमेशा शुरू शुरू में यात्रा किया करते थे, तो गऊ के संबंध में, गऊ सेवा के संबंध में कुछ बात एक बार हुई थी, समाज में उठी थी, तो महाराज जी ने वृंदावन से अहमदाबाद की ओर जाते हुए ट्रेन में ये तय कर लिया कि अब हम केवल गऊ के दूध का प्रयोग करेंगे, भैंस का दूध नहीं लेंगे, नियम बना लिया। तो सुमित भाई कह रहे थे कि हमने कहा कि स्वामी जी रास्ते में जितने लोगों को पत्र लिखा गया है पहले से कि महाराज के लिए दूध फल ले आना, तो किसी को नियम नहीं लिखा गया है, क्योंकि पहले तो नियम आपका था ही नहीं, तो अब रास्ते में आपने नियम ले लिया तो कैसे बनेगा, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो पहुंच जाए हम लोग जगह पर तो हम सबको बता देंगे, सब सब ऐसा आप निभाइएगा। तो महाराज ने कहा कि तुम चुपचाप रहो, जाके बैठो, तो तुम क्लास में बोलो मत, भेज दिया उनको, चले गए। तो सुमत जी कहें कि मेरे जी में तो ऐसी तकलीफ पैदा हुई कि आज मैं स्वामी जी महाराज को भूखा कैसे रखूंगा, पिलाऊंगा कैसे दूध, रास्ते में जो आएगा तो पता नहीं गाय का आएगा भैंस का आएगा, किसी को सुविधा नहीं गया है। तो चुपचाप जाकर के बैठ तो गए, लेकिन बेचारे को बहुत छटपटी कि अब क्या करें, महाराज जी तकलीफ में रहेंगे, इनको कैसे दूध पिलाऊंगा। तो कह रहे थे कि मेहसाना एक स्टेशन है, उस स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उस ट्रेन में दूसरी जगह पर दूसरे संत लोग बैठे थे, दूसरे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और भक्तों के यहाँ से घर की गाय का दूध और खूब केसर और मेवा और मिट्टी सब डाला हुआ, पकाया हुआ, इतना बड़ा बड़ा चांदी का लोटा पात्र उसमें भर भर के स्टेशन पर आया होगा। इनको क्या पता, ये तो सेकंड क्लास में से दौड़ के आके स्वामी महाराज के पास गए थे, अब सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, अब दूध पीने का समय है, अब क्या पिलाएंगे। तो दूसरे लोग लेकर के आए दूसरे संतों को पिलाने के लिए, तो उन संतों ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर और आगे बढ़ो, दूसरा एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उसमें एक प्रज्ञा चक्षु संत बैठे हैं, ये पात्र लेकर के जाओ और उनको पहले पिलाओ, और जितना वो पी सके उतना पिला देना, जो बाकी बचे सो वापस ले लेना, तब हम लोग पिएंगे। ऐसा कहकर उन संतों ने भेज दिया। तो सुमती स्वामी जी महाराज के पास खड़े थे और असमंजस में थे कि अब कैसे करें क्या करें। इतनी देर में उस स्टेशन पर संतों के भेजे हुए लोग लोटे में खूब गाय के घर की गाय का दूध और बढ़िया पकाया हुआ सब ला करके हाजिर किया उनके पास। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि आप लोगों को कैसे मालूम होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ से आए हो भाई, किसने भेजा है। तो तीन चार जने थे लोग संत के भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज हमारे महाराज जी लोग उधर दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे हैं, वे लोग जा रहे हैं, तो उनका नियम है केवल गाय का दूध पीने का, उनके लिए हम लोग घर की गाय का दूध बना के लाए थे, और उनको पिलाने के लिए जब पहुंचे हम तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। तो समझ में आया तो समझ गए कि किसने भेज दिया, कैसे आ गया। उनके लिए कोई नई बात तो थी नहीं, तो अपना ग्लास निकलवाया सुमत जी से और जितना पीने का था उतना पी लिया और बाकी भेज दिया। तो दूध इतना ज्यादा था कि वो चार पांच छह संत जितने थे सबको पिला करके भी वो खत्म होने वाला नहीं था, बहुत था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, तो हम लोगों के पास बहुत दूध है, इस लोटे में जो बचा है और आप ले लीजिए, और आप ले लीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने सुमत जी को तो पहले खूब छिटकाया, कहने लगा कि कहो बेटा कहाँ से इंतजाम किए, ऐसे ऐसे करके हंसी बात बनाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने जाकर के उन लोगों को कुछ कह तो नहीं दिया। तो सुमत जी बोले कि नहीं महाराज, उनको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो इसी चिंतन में बैठते थे कि अब कहाँ से लाइन का सकते। तो कहा कि अच्छी बात, तुम भी पियो, चलो अब तो सरकारी इंतजाम है ना, अब उसमें कमी क्या है, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सुमत जी बताते हैं कि गिलास भर भर के स्वामी जी महाराज ने मुझको भी पिला दिया। उस दूध में जो स्वाद था, जो मिठास था, वो जिंदगी में कभी मैंने पिया नहीं था, न उसके पहले न उसके बाद, आज तक कभी मिला ही नहीं। तो सुमत जी को भी पिला दिया, अपने भी पी लिया, बाकी लेकर के वो लोग चले गए। और जो हम लोग बैठे हुए थे दूसरी जगह फर्स्ट क्लास में, उनको पिला के लेकर के कर लिया काम। तो एक उदाहरण नहीं, ऐसे मैं अनेक उदाहरण रख सकती हूँ। स्वामी जी महाराज को तो हम लोगों ने नजदीक से देखा ही है, जाना ही है। बाइबल में मैंने महात्मा ईसा के जीवन में पढ़ा है कि जब उनको दीक्षा दी गई, उनका बपतिस्मा कराया गया, भगवान के साथ पिता का संबंध जोड़ने का उनका एक रस्म होता था। गांव में जो नदी की धारा बहती थी, उस नदी में शिष्य होने वाले को स्नान करवाया जाता था और यहाँ पर तिलक कराया जाता था जल से, जो भी कुछ होता था सब हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक बात है, अब पिता का काम करने की घड़ी आ गई है, तो पहले मैं उससे प्रार्थना तो कर लूँ, पहले उससे पूछ तो लूँ कि मुझे क्या क्या करना है और वो कैसे कैसे कराएगा। तो ऐसा सोच करके वे सुनसान निर्जन स्थान में एक पर्वत की चट्टान के नीचे जा करके घुटने टेक करके प्रार्थना करने बैठे। तो प्रार्थना में पिता की सन्निधि के आनंद में वे ऐसे मस्त हो गए कि 40 दिनों तक उनका ध्यान ही नहीं छूटा। तो ये लिखा हुआ है कि वो घुटने टेक करके और अपने पिता के अनुराग में जो जो घी में आता था तो सब भगवान को सुनाते जाते थे और प्रेम के उसमें आवेश में अश्रुपात होता रहता था, बातें होती रहती थी, जो जो जी में आता था करते रहते थे। ऐसा करते करते सुबह की शाम हो जाए, शाम का सवेरा हो जाए, तो गांव से नगर से बस्ती में से कौवा पक्षी घरों से रोटी के टुकड़े मुख में सूंख में पकड़ करके ले आते और